الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. اس کلاس میں ہم سورہ انعام کی تفسیر پڑھتے ہیں معرف القرآن جلد نمبر 3 سے، اور جو آیات ابھی تلاوت کی گئی ہیں وہ آیات نمبر 27 سے 32 تک ہیں سورہ انعام کی. ان سے پیچھے جو آیات تھیں ان کی تفسیر ہم نے پڑھ کے مکمل کر لی تھی پچھلی کلاس کے اندر، تو وہ ریکارڈنگ میں موجود ہے. پہلے ہم ان کا ترجمہ پڑھتے ہیں ان آیات کا، جیسے کہ ہماری ترتیب ہے بارف القرآن کی ترتیب ہے. جیسے سب سے پہلے ترجمہ جو کہ حضرت شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ دراصل یہاں پر حضرت نے نقل فرمایا ہے، اور پھر اس کے بعد خلاصہ تفسیر پڑھتے ہیں اور پھر معارف و مسائل. تو ان آیات میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ولو ترا، یعنی ہم اپنی زبان میں اس کو سمجھیں گے ترجمہ کرتے ہوئے تو ہم کہیں گے کہ ولو ترا کا مفہوم یہ ہوگا اردو زبان میں کہ اگر آپ دیکھیں، ٹھیک ہے، یا اگر آپ دیکھ رہے ہوتے، یا کاش کہ آپ دیکھتے، ٹھیک ہے. ولو ترا اذ وقفوا علی النار، ٹھیک ہے، جب وہ کھڑے کیے جائیں گے، وہ روک دیے جائیں گے آگ کے اوپر. علن نار، وقفہ یقفو کا مطلب ہوتا ہے رک جانا، اور وقفو کا مطلب روک دیا جانا، ٹھیک ہے. یعنی جیسے کہ یہ پورا ہجوم جو ہے کفار کا، اس کو دھکیلا جا رہا ہوگا حتیٰ کہ یہ جہنم کی آگ کے دہانے کے اوپر پہنچ جائیں گے، اور وہاں پر وہ روک دیے جائیں گے کہ اب تم رک جاؤ، ٹھیک ہے. تو وہ منظر ہوگا، سامنے جہنم کی آگ ہوگی دہکتی ہوئی، اور اس کے شعلے جو ہیں بلند ہو رہے ہوں گے، اور نہ جانے اور کیا کیا وہاں پر خوفناک اور ہولناک مناظر ہوں گے. وہاں پر ان کو روکا جائے گا، تو وہ اس وقت کہیں گے فقالو، بس وہ دوزخ پر پہنچ کر کے یہ کہیں گے یا لیتنا، اے کاش، یا لیتنا، ٹھیک ہے. لیتا کا جو لفظ ہے یہ کاش کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی زبان کے اندر، اور یا لیتنا، اے کاش، ٹھیک ہے. یا کا ترجمہ ایسے کرتے ہیں نا، جب آپ کسی کو پکارتے ہیں، حرف ندا ہے یہ، پکارنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے یہ یا والا. تو یہ ایک محاورہ ہے عربی زبان کا، اور اردو زبان انگریزی میں بھی اسی طریقے سے محاورے ہوتے ہیں کہ الاس، ٹھیک ہے، ALAS جیسے انگریزی کے اندر ہوتا ہے، او کاش اردو میں ایسے کہتے ہیں. تو یا لیتنا نردو، کہ کاش کے ہم لوٹا دیے جائیں، हम यहाँ से रद्द कर दिए जाए, यानी हमें आगे कबूल ना किया जाए, ठीक है ना। वैसे तो इंसान रद्द कर दिए जाने से को अच्छा नहीं समझता, लेकिन जहन्नुम पे कबूल हो जाना, जहन्नुम के लिए कबूल हो जाना, ये तो जब जहन्नुम सामने आएगी तो उसका इनकार करने वाले भी उसको मान लेंगे, और वहां पर जहन्नुम में कबूल हो जाने से वो तमन्ना करेंगे कि काश के हमें यहाँ पे रद्द कर दिया जाए, हमें लौटा दिया जाए, नुरद्दु हमें लौटा दिया जाए, वला नुकद्दिबु बि आयाति रब्बिना, और हम ना झुटलाते, ठीक है, हम ना झुटलाएं, बि आयाति रब्बिना, अपने रब की निशानियों को, हम अपने रब की निशानियों को ना झुटलाएं, ठीक है, या हम ना झुटलाते, व नकूना मिनल मोमिनीन, और हम हो जाएं ईमान वालों में, मानने वालों में, इनकार करने वालों में नहीं बल्कि मानने वालों में हो जाए, ठीक है। वो उस वक्त जाकर के तमन्ना करेंगे कि काश के वो जो ईमान वाले हमसे जुदा कर दिए गए ना, ठीक है, कि इससे पहले एक मकाम ऐसा आया था कि जहां पर सारे इंसान एक साथ चल रहे थे, एक साथ थे वहां पर, लेकिन वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, जब ये हुक्म आ गया सूरह यासीन के अंदर जिसका जिक्र है, तो वहां पर फिर मुमताज कर दिया गया ईमान वालों को, अलग रास्ते के ऊपर चला दिया गया जो कि पुले सरात के ऊपर जाता है, और पुले सरात पर से होते हुए जन्नत के अंदर जाता है, ये ईमान वालों का रास्ता था, ठीक है, और ये इनका रास्ता था कि ये डायरेक्ट जहन्नुम में जा रहे थे, ये पुले सरात पर से नहीं गुजरेंगे, ये डायरेक्ट जहन्नुम के अंदर जाएंगे जहन्नुम के दरवाजों से होते हुए, तो उस वक्त ये तमन्ना करेंगे काश के हम उन लोगों में से होते जिनको के उस तरफ कर दिया गया, जन्नत के डायरेक्शन में डाल दिया गया, ठीक है, और वो कौन थे, मानने वाले थे, मिनल मुमिनीन, रद्द करने वाले नहीं थे, इनकार करने वाले नहीं थे, ये सुनते तो थे लेकिन मानते नहीं थे, ठीक है, या सुनी अनसुनी कर देते थे, सुनना न सुनना उनका बराबर होता था, क्लास भी ले लेते थे लेकिन क्लास की कोई बात जो है ना उसको मानते नहीं थे, जब मौका पड़ता था तो उस वक्त रद्द कर देते थे उस बात को, हाँ मुझे ही सारी नसीहतें क्यों करते हैं, मैं ही रह गई हूँ सारी नसीहतें करने के लिए, राइट। तो ये कहना, ये भी रद्द कर देना है कि आपने सुना तो लेकिन आपने माना नहीं, आप अपने अलग दुनिया के अंदर रह रही हैं, आपने मानी कोई नहीं है बात, ठीक है ना, बस सुनी चली जा रही हैं, और अपने जो है वो सो कॉल्ड नॉलेज बढ़ाए चले जा रही हैं, आलमा कोर्स करे चले जा रही हैं, और इल्म हासिल करे चले जा रही हैं, लेकिन इनकार करे चले जा रही हैं साथ साथ, ठीक है। तो जन्नत के डायरेक्शन में कौन जाएंगे, मानने वाले जाएंगे, मानने वालियां जाएंगी, और इनकार करने वाले वो जहन्नुम के दहाने के ऊपर पहुंचाए जाएंगे, वहां जाकर कहेंगे काश के हम मानने वालों में से होते, ठीक है ना, और हमने रद्द ना की होती वो निशानियां जो हमारे परवरदिगार की हम तक पहुंचाई जा रही थी, बल कोई नहीं बदा लहुम, अब तो जाहिर हो गया उनके ऊपर, उनके लिए अब ये बात जाहिर हो गई, मा कानू युखफून मिन कबल, जो ये पहले जो है छुपाते थे, खफी करते थे जिन बातों को, अब इनके ऊपर जाहिर हो गई, ठीक है ना, लोग समझते थे कि हाँ जी बड़ी दीनदार हैं, बड़ी जो है वो नमाजी परहेजगार हैं, बड़ा इल्म हासिल करने वाली हैं, लेकिन हकीकत में हमारे अंदर जो हालात थे दूसरों को नहीं पता थे, हम दूसरों से छुपा के रखे हुए थे ये वाले हालात, इस दिन जो है ये सारे हालात जाहिर हो जाएंगे कि भाई ये तो ना मानने वालियों में से थी, अगर मानने वालों में से होती तो फिर तो ये उधर जा रही होती ना, ये यहाँ पे कहाँ से आ गई, क्योंकि ये ना मानने वाली थी, तो उस दिन जो है वो झूठ हमारा जाहिर हो जाएगा, जैसे कि पिछली आयात के अंदर भी झूठ जाहिर कर दिया अल्लाह ताला ने, वलौ रुद्दू लआदू लिमा नुहू अन्हु, और अगर ये फिर लौटा दिए जाएं, रुद्दू यानी यहां से रद्द कर दिए जाएं और पीछे वापस लौटा दिए जाएं, लआदू तो ये फिर वही काम करेंगे, लिमा नुहू अन्हु जिससे कि उनको मना किया जाता था, नहा यन्हु मना किया जाना, मना करना, ठीक है, तो जिस चीज से उनको मना किया जाता था ना ये फिर वही करेंगे, उसी तरफ लौट जाएंगे अपनी नाफरमानी की तरफ, अपनी जिद की तरफ, अपनी अनानियत की तरफ फिर से लौट जाएंगे। वह इन्नहुम लकाज़िबून, और बेशक वो लोग तो झूठे थे, ठीक है, या झूठे हैं, ये लोग तो झूठे हैं। इन्नहुम लकाज़िबून, काज़िब झूठ बोलने वालों को कहते हैं। वकालू, और कहते हैं, इन हिया इल्ला हयातुना दुनिया, कि नहीं है ये, नहीं है सिवाय दुनिया की जिंदगी, ठीक है, यानी हमारे लिए जिंदगी नहीं है मगर यही दुनिया की, इसके अलावा कोई जिंदगी नहीं है, ठीक है ना, हिसाब किताब कोई होना नहीं है। मरने के बाद जो है वो ये सारे मामला जो कि कुरान मजीद में बताए गए हैं और हदीस मुबारका के अंदर बताए गए हैं, ये कोई कुछ नहीं है, ठीक है, जुबान से नहीं कहते, जरूरी नहीं है कि जुबान से कहा जाए, लेकिन दिल में इनकार करते हैं, ठीक है, दिल में इनकार करते हैं। जैसे कि पीछे की आयत के अंदर भी क्या तफसीर थी कि जुबान से अपने आप को मुशरिक कहते नहीं थे, लेकिन हरकतें ऐसी थी, सोच ऐसी थी कि वो शिर्क ही कर रहे होते थे, तो कयामत के दिन अल्लाह ताला उनके शिर्क को जो है वो खोल देंगे, अगरचे के जुबान से शिर्क नहीं करते थे, ठीक है, और जो है वो सजदे नहीं करते थे बुतों के सामने या मज़ारों के ऊपर जाकर के सजदे नहीं करते थे, लेकिन हरकतें उनकी मुशरिकों वाली वाली ही थी। तो उसी तरीके से बहुत सारे और भी के हिसाब किताब नहीं होना है और ना जो है वो जजा मिलनी है, यानी यहाँ पे जो सबर कर रहे हैं ना, तो इस सबर के ऊपर कोई नो वन कहते हैं ना कि मैं इतना जो कर रही हूँ, मैं इतना जो कर रहा हूँ तो फायदा क्या उसका, राइट, तो मैं क्यों करूँ, क्या फायदा है इन सब चीजों का, मैं क्यों करूँ, कोई दूसरा तो करता नहीं है, क्या है इसका मतलब? इसका मतलब यह है कि आखिरत का इनकार कर रहे हैं, आखिरत का इनकार कर रहे हैं, क्योंकि आखिरत के अंदर तो इसके ऊपर जजा मिलनी है। आप कह रहे हैं कि नहीं, क्यों करूं, कुछ नहीं मिलता, क्या कर रही हैं, क्या कर रहे हैं, आखिरत का इनकार कर रहे हैं, ठीक है ना, और इस बात का इनकार करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वाकई आखिरत का इनकार कर रहे हैं, वाकई आखिरत का इनकार कर रहे हैं। सिर्फ ये नहीं है कि बुरा काम करूं करने वाले को जो है वो आखिरत के अंदर सजा मिलेगी, नहीं, सिर्फ सजा के लिए आखिरत तो नहीं अल्लाह ताला ने बनाई है, आखिरत तो अल्लाह ताला ने जजा के लिए भी बनाई है ना, सवाब के लिए भी बनाई है ना। आखिरत में क्या सिर्फ जहन्नुम है, जन्नत नहीं है आखिरत के अंदर है? तो जो सबर इस दुनिया के अंदर कर रही हैं या जो नेकी का काम इस दुनिया में कर रही हैं, तो वो वैसे ही फजूल में कर रही हैं, फालतू में जा रहा है वो सारा का सारा, राइट, तो जन्नत किधर चली गई फिर, क्या फायदा है फिर जन्नत का, क्या फायदा है फिर आखिरत पे ईमान लाने का, राइट, कहां से इस्लाम और मुसलमानों में अपना नाम आ जाएगा जब जन्नत का इनकार हो गया। एक होता है जहन्नुम का इनकार, वो तो हाँ जी गंदे लोग करते हैं जहन्नुम का इनकार, लेकिन अच्छे लोग जो हैं वो जन्नत का इनकार करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं, कोई जवाब दे मुझे। जो अच्छे लोग होते हैं नमाजें पढ़ने वाले और जो है वो बुरका करने वाले, राइट, वो किस चीज का इनकार करते हैं, वो जन्नत का इनकार करते हैं, जब वो ये सोचते हैं, जब वो ये कहते हैं कि क्या फायदा है इतना जो है वो नेकियां करने का, क्या फायदा है जो है वो बर्दाश्त करने का, क्या फायदा है जो है वो सब्र करने का, वो जन्नत का इनकार कर रहे हैं, और जन्नत भी आखिरत की ही चीज है, तो आखिरत का इनकार कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वकालू इन ही इल्ला हयातुन दुनिया, बस इसी दुनिया के अंदर मुझे जजा यही चाहिए, मुझे जन्नत यही चाहिए, इसी दुनिया में चाहिए, क्योंकि इन ही इल्ला हयातुन दुनिया, इस दुनिया की जिंदगी के अलावा कोई जिंदगी है ही नहीं, तो भाई जन्नत मुझे यही ला करके दो ना, राइट, जन्नत मुझे यही ला करके दो ना, क्योंकि इसके अलावा कोई दुनिया है ही नहीं, कोई जिंदगी है ही नहीं। तो फरमाते हैं वकालू, और वो उस वक्त कहेंगे वो ये कि कहा करते थे, ठीक है ना, इन ही इल्ला हयातुन दुनिया व मा नहनु बिमबऊसीन, और हम जो है वो मरने के बाद दोबारा खड़े करके जन्नत में कोई थोड़ी दाखिल किए जाएंगे, हमें तो इधर ही जन्नत चाहिए, ठीक है ना, वो तो गंदे हैं ना, शराबी कबाबी जानी, राइट, को जो कि जहन्नुम का इनकार करते हैं, हम यहाँ पे जो दरस तफसीर के अंदर मौजूद है ना कुरान मजीद की तफसीर, हम जन्नत का इनकार करते हैं, ठीक है ना, और ये कहते हैं कि वमा नहनु बिमबऊसीन, हम कोई नहीं खड़े किए जाएंगे। वलौ तरा, और काश कि आप देखते, इद वुकिफू अला रब्बिहिम, जब इनको खड़ा किया जाएगा इनके रब के सामने, काला अलैस हादा बिल हक, तो वो कहेगा, अल्लाह ताला कहेगा या अल्लाह ताला कहलवाएगा फरिश्तों के जरिए से कि क्या ये हक नहीं है, क्या ये सच नहीं है, अब तो मैं नजर आया कि सच नहीं है। कालू बला व रब्बिना, फिर वो जवाब देंगे बेशक कसम है हमारे रब की, राइट, हमारे रब की कसम, व रब्बिना वाव कसमिया। काला फजूकुल अजाबा बिमा कुंतुम तकफुरून, वो कहेगा, फरमाएंगे अल्लाह ताला, फजूकुल अजाबा, बस चखो तुम अजाब, बिमा कुंतुम तकफुरून, बवजह इस उस कुफर के, उस इनकार के जो कि तुम किया करते थे। इन्होंने क्या लिखा है, अगर कोई आपको कहे तुम ऐसे कर रहे हो तो इसका आपको मरने के बाद अजाब होगा, और दूसरी तरफ से कहे कि हम समझ लेंगे, हम समझ लेंगे, तो ये भी इनकार करना कहलाएगा। जी बिल्कुल, ठीक है, यानी ये अल्लाह के अजाब को समझ लेंगे, तो या तो ये अल्लाह के अजाब का इनकार कर रहे हैं कि नहीं, कोई अजाब नहीं होगा, ठीक है, या ये कह रहे हैं कि अजाब होगा लेकिन आई विल बी एबल टू डील विद इट, मैं उससे निमट लूंगा, मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं अल्लाह के अजाब से निमट लूंगी, ये तो उससे भी ज्यादा बुरी बात, ठीक है। लेकिन जो दाई है ना, जो दावत देने वाला है, ठीक है, तो उसको जो है ना इस तरह से बात करनी नहीं चाहिए किसी से, पर्सनल लेवल के ऊपर, डायरेक्ट लेवल के ऊपर ऐसे नहीं कहना चाहिए कि तुम जो ये कर रहे हो ना, तो इसका आपको मरने के बाद अजाब होगा, ऐसे नहीं बात करनी चाहिए, ठीक है, ऐसे नहीं बात करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से बात करना जो है ना, ये उस बंदे को कॉर्नर कर देता है, ठीक है, और कॉर्नर करने का मतलब ये होता है कि अब वो दीवार से लग गया है, अब जो है ना उस बंदे ने पलट करके कोई उल्टा जवाब ही देना है आपको, ठीक है ना, क्योंकि एक तो वो गुनाह कर रहा है ना, ठीक है, तो गुनाह करने वाला जो होता है ना, फिर वो ऐसे तैयार नहीं होता कि बस अब आप उसको कहें कि तुम्हें अजाब होगा और वो फौरन से जो माने, हाँ सॉरी 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 मुझे अजाब होगा, हालांकि आप झूठ बोल रहा हो तो वो और बात है, वो कुछ लोग झूठ भी बोल देते हैं उस वक्त सिचुएशन में फंस करके, झूठ बोल देते हैं, जैसे कि कयामत के दिन भी सिचुएशन में फंस करके कुछ लोग झूठ बोल देंगे, ठीक है, लेकिन हम उनको, हम स्पेशली अपने जानने वालों को, अपने मोहब्बत करने वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को ऐसे कॉर्नर ना करें, ऐसे दीवार से ना लगाएं, तो इस अंदाज से बात ना करें, ठीक है, जैसे उन्होंने लिखा ये भड़काने वाली बात होगी, इस अंदाज से बात ना किया करें लोगों से, ठीक है ना, बल्कि इसके बजाय जो है ना वो एक इल्मी तरीके से, एक तालीमी तरीके से बात करें कि भाई इस तरह की जो चीज जो हो रही है या जो आप कर रहे हैं, तो ये इसके ऊपर मना किया गया है, ठीक है ना, इसके ऊपर कुरान मजीद में मना किया गया है, इसके अंदर जो है वो तफसीर या कि कोई ऐसी बात, यानी इल्मी नुक्ता जैसे कि उनके सामने बयान करें कि ये गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है, और ऐसा करने से जो है ना, फिर देखें हदीस मुबारका के अंदर इसकी वईद आई है इसके ऊपर जो है वो, ठीक है, तो ऐसे नहीं बोले कि जी आप जो ये कर रहे हैं उसके ऊपर आपको बताओ, अच्छा उन्होंने आगे से एक्सप्लेन कर दिया अपने आप को कि नहीं, दाई दाई नहीं होता, दाई होता है, दाई तो वो होती है खातून जो कि डिलीवरी करवा रही होती है, तो कह रही है कि दाई ने ऐसी बात नहीं की है, बस कुछ कम अकल लोग हर बात पे धमकी देते हैं कि तुमको अजाब होगा, जबकि इल्म उनको होता कुछ नहीं, हाँ इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, तो तुमको अजाब होगा, भाई ये अमल अजाब, अब अजाब वाला अमल, ठीक है ना, ये जो अमल है जैसे कि आप मौसीकी लगा रही हैं अपने स्टेटस के ऊपर, ठीक है ना, तो मौसीकी लगाना ये नबी अलैहि सलाम ने इससे मना फरमाया है और इसके ऊपर अजाब की वईद की है, ठीक है, तो ये तो एक आपने नॉलेज ट्रांसफर कर दी ना, एक इल्म जो है वो अगले बंदे को दे दिया कि भाई ये मना है और इसके ऊपर ऐसे जो है वो अजाब की वईद है, ठीक है, तो वो एक अलग तरीका है बात करने का और ये एक अलग तरीका है बात करने का कि तुमको अजाब, ठीक है, अच्छा फरमाया कि वलौ तरा इज़ वुक़िफ़ू अला रब्बिहिम, قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. تحقیق کے خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے تکذیب کری اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، ٹھیک ہے، یعنی جنہوں نے کہا کہ نہیں کوئی نہیں ملاقات ہونے والی اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے. کیا مطلب اس کا؟ ہر کوئی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا انکار نہیں کرتا تھا، بلکہ یہ کہتے تھے، اکثر تو ان میں سے یہی کہتے تھے کہ ہاں ملاقات ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں بڑی ہی ویلکم، بڑی زبردست قسم کی ویلکم دے گا، ٹھیک ہے نا، اور ہمیں جو ہے وہ اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت اور انعامات دیے ہیں، تو جب قیامت کے دن اللہ سے ملاقات ہوگی تو ہمیں اور بھی زیادہ بڑے بڑے انعامات ملیں، ٹھیک ہے، اگر ہوئی تو اور بھی بڑے بڑے انعامات ملیں گے، ٹھیک ہے. تو وہ بھی تکذیب ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی جو تعریف نبی علیہ السلام نے ہمیں بتائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ حساب کتاب کے ساتھ تعریف ہوگی، یعنی حساب کتاب کے ساتھ ملاقات ہوگی. حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة، یہاں تک کہ جب آ پہنچے گی ان پر قیامت اچانک، الساعة قیامت کی گھڑی، بغتة اچانک، قالو تو وہ کہیں گے یا حسرتنا، اے افسوس، یا حسرت، اے حسرت، ہماری حسرت، علی ما فرطنا فیہا، اس بات کے اوپر کہ ہم نے کوتاہی کری اس کے اندر. فرطنا، فرط یفرط تفریطا، یہ اس کا باب بنتا ہے، تفریط، ٹھیک ہے. تو فرطنا کا مطلب کیا ہے؟ تفریط کرنا، اور تفریط یہ بھی ایک ذرا مشکل اردو والا لفظ ہے، کل بلکہ آپ لوگوں کو میسج بھی بھیجا تھا، تفریط اس کے اندر اس کو بریکٹ میں بتایا تھا کہ کسی چیز کے حق میں کمی کرنا، اس کو تفریط کہتے ہیں. کوئی چیز زیادہ اہمیت کی حامل ہے یا اہمیت کی مستحق ہے اور آپ اس کو بہت کم اہمیت دیتے ہیں تو اس کو تفریط کرنا کہتے ہیں، اور اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ افراط، افرط یفرط افراطا، یعنی زیادتی کرنا، جتنا اس کا حق تھا اس سے زیادہ اس کو دینا شروع کر دینا، اس کو افراط کہتے ہیں. تو افراط و تفریط. تو کہیں گے اے حسرت ہماری کہ ہم نے اس کے اندر تفریط کری، ہم نے اس کو اتنی امپورٹنس نہیں دی جتنی کہ ہمیں اس کو دینی چاہیے تھی، ٹھیک ہے. جیسے کہ دنیا کا امتحان ہوتا ہے اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، کسی جگہ سفر کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، کوئی شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے تو مہینوں سے بلکہ سال پہلے سے جو ہے وہ تیاری کرنی شروع کر دیتے ہیں، نہ جانے کیا کیا اس کے لیے کپڑے بناتے ہیں، تو ہال بک کرتے ہیں، تو کھانوں کا انتظام کرتے ہیں، تو پکاتی بھی بلاتے ہیں، دوسرے ملک سے بھی پکاتی بلا لیتے ہیں، اور بہت بہت ساری بہت زیادہ جو ہے وہ، لیکن بھائی اہم چیز ہے، ہاں بھائی بیٹے کی شادی ہو رہی ہے اور جو ہے وہ فلانا جو ہے وہ امتحان ہونے والا ہے، اے لیولز کا امتحان ہو رہا ہے، ادھر جو ہے میٹرک کا امتحان ہو رہا ہے، کتنی ساری تیاری، ادھر نہیں جانا ادھر نہیں جانا، لگ کر کے پڑھائی، لیکن آخرت کی تیاری، ٹھیک ہے نا، گناہوں سے توبہ کر کے آخرت کی تیاری کرنی ہے، رائٹ. آخرت کی تیاری جو ہے نا وہ بھی اگر کرنی بھی ہے تو وہ بھی نفلوں کے اوپر نفلیں، نفلوں کے اوپر نفلیں، بس گناہوں سے توبہ نہیں کرنی ہے بھائی. آخرت کی تیاری میں سب سے پہلا کام ہے گناہوں سے توبہ کرنا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اعمال کرنا، نفلی اعمال، ٹھیک ہے. تو نہیں وہ تو نہیں، اس کے لیے تو ٹائم نہیں ہے، یا اس کے لیے تو ہم نے سوچنا ہی نہیں ہے اس کے بارے میں، تو پھر کیا ہوگا؟ یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم، اور وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں کے اوپر، ظہور، ظہور پیٹھ ہے، اپنے بیکس، کس چیز کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے؟ نفلوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے؟ نہیں، گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے. اور گناہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ فرائض کو ترک کرنا، یہ گناہ ہوتا ہے، فرائض کو چھوڑنا، ٹھیک ہے، جیسے نماز چھوڑنا، یہ گناہ ہے، اس کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے پیٹھوں کے اوپر. پردے کو ترک کرنا، یہ گناہ ہے، اس کا بوجھ اپنے پیٹھوں کے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے. رائٹ. موسیقی سے اجتناب نہ کرنا، موسیقی سے نہ بچنا، یہ گناہ ہے، اس کو اپنے پیٹھ کے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے. تو وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم علی ساء ما یزرون، खबरदार हो जाओ, कान खोल के सुन लो, अला का इस तरह से तर्जुमा किया जाता है, ठीक है, खबरदार हो जाओ। सा अमा, कितना बुरा है ये बोझ जो कि उन्होंने उठाया हुआ है, बा यजीरू जो उन्होंने उठाया हुआ है, कितना बुरा है बोझ, गुनाहों का बोझ। वमल हयात दुनिया इल्ला लाइब व लहव, और नहीं है दुनिया की जिंदगी सिवाय लाब व लहव के, यानी खेल और फजूल की चीज, जी बहलाना। दुनिया की जिंदगी से यहाँ पे कौन सी मुराद, दुनिया के अंदर जो ख्वाहिशात के पीछे भागना है, जो गुनाहों के काम करना है, ये लहव व लाब है, बेकार फजूल किस्म की चीज है। भाई दुनिया की जिंदगी इसलिए नहीं दी गई थी, दुनिया की जिंदगी तो बंदगी के लिए दी गई थी भाई, इबादत के लिए दी गई थी, अल्लाह को राजी करने के आमाल करने के लिए दी गई थी, चाहे वो मुसल्ले पर हो, चाहे वो मुसल्ले के अलावा हो, चाहे वो घर के अंदर हो, चाहे वो जो है वो खानदान के अंदर हो, चाहे जो है वो वर्क प्लेस के अंदर हो, चाहे जो है कहीं भी हो, वो वाले आमाल करने के लिए दुनिया की जिंदगी दी गई थी, ख्वाहिशात पूरी करने के लिए तो नहीं। तो अगर ख्वाहिशात पूरी करने में लगा दिया है और अल्लाह की ख्वाहिश पूरी करने में नहीं लगाया है, तो ये दुनिया की जिंदगी बर्बाद हो गई तुम्हारी, लहव और लाभ एकदम फजूल तुमने जो है वो अपना वक्त खर्च कर दिया। वलद्दारुल आखिरा, और जो आखिरत का घर है, दार घर आखिरत का, खैरुन ज्यादा बेहतर है, इसके लिए लिल्लदीना यत्तकून, या ज्यादा बेहतर तो लफ्जी तर्जुमा बनता है, हकीकत क्या है कि आखिरत का घर किसके लिए बेहतर है, लिल्लदीना यत्तकून, वो जो के तकवा इख्तियार करते थे दुनिया के अंदर, यानी गुनाहों से बचते थे। तकवा इज इक्वल टू गुनाहों से बचना, ठीक है। अफला ताकिलून, क्या तुम अकल नहीं रखते, क्या तुम अपनी अकल को इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है, ये दुनिया की जिंदगी के अंदर लगे हुए हो, लेकिन आखिरत की जिंदगी जो के अरबा खरब साल, और वो भी इतने के वो भी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि इंसान की इब्तिदा तो है कि वो पहले नहीं था फिर उसकी इब्तिदा हुई, लेकिन इंसान की कोई इंतहा नहीं है कि भाई उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी और फिर उसको जो है वो फिर कोई और मखलूक बना दी जाएगी, बस इंसान का चैप्टर क्लोज नहीं, इंसान का चैप्टर कभी भी क्लोज नहीं होगा, हमेशा हमेशा के लिए। तो इस दुनिया में कितनी जिंदगी गुजारते हैं, ज्यादा से ज्यादा 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80, 90 टोटल, राइट, कोई बहुत ज्यादा लंबा जी गया तो 120 साल जी लेगा, और आखिरत की जिंदगी ये तो कभी भी खत्म होने वाली नहीं है। तो करोड़ों का लफ्ज भी जो है ना वो इसके लिए कोई हैसियत नहीं रखता, क्योंकि ये करोड़ों से भी ज्यादा साल है, क्योंकि हमेशा हमेशा चलने वाली जिंदगी है। अकल नहीं इस्तेमाल करते हम इतनी सी बात को समझने के लिए, मानते भी हैं कि हाँ मरने के बाद जो है वो जिंदगी होगी और आखिरत की जिंदगी है, लेकिन बिल्कुल अहमियत ही कोई नहीं उसकी। खुलासा तफसीर हजरत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की बयानुल कुरान से हजरत ने यहाँ पे खुलासा तफसीर नकल फरमाई है, फरमाते हैं कि और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको उस वक्त देखें, तो ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो छोटी सी तफसीरी जुमला या अल्फाज लिख देते हैं, और अंडरलाइन जो होता है वो तर्जुमा ही होता है, और अगर आप देखें, वलऊ तरा, अगर आप देखें तो उनको, यानी किसको देखें, उनको देखें, उन लोगों को देखें, काफिरों को देखें उस वक्त, ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम मोस्ट लाइकली वहां पे खड़े होकर के देख नहीं रहे होंगे, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम तो ईमान वालों के साथ होंगे, ठीक है ना, और जन्नत के दरवाजे पे खड़े हुए होंगे, और वहां पर जो है वो उम्मतियों को अंदर अंदर अंदर, ठीक है, तो ये जो सारा का सारा सीन हो रहा होगा, ये तो अलग सीन हो रहा होगा, और नबी अलैहिस्सलाम आलिमुल गैब ना यहाँ है ना वहां है कि हर जगह मौजूद हो, ठीक है ना, तो ये तो नहीं कि जन्नत पे दरवाजे पे भी मौजूद है, जहन्नुम के दरवाजे पे भी मौजूद है, तो गालिबन इसी वजह से फरमाया जा रहा है कि अगर आप देखते, यानी अगर आप वहां पे खड़े होकर इनके हाल को देख रहे होते था ना, देख रहे होते, तो उस वक्त आप देखते कि बड़ा हौलनाक वाकया नजर आ रहा होता, जबकि ये मुनकरीन है, दो मुनकरीन मुनकरीन इनकार करने वाले दोजख के पास खड़े किए जाएंगे, और करीब होगा कि जहन्नुम में डाल दिए जाएंगे, बस अभी टिप, यानी क्या कहते हैं, टिप ओवर, अभी जो है ना वो इनको हल्का सा टिप किया जाएगा और ये आगे जहन्नुम के अंदर। तो हजारों तमन्नाओं के साथ ये लोग कहेंगे, यानी बड़ी दिल की तमन्ना से कहेंगे कि हाय क्या अच्छी बात होती कि हम दुनिया में फिर वापस भेज दिए जाएं, और अगर ऐसा हो जाए तो हम फिर अपने रब की आयात मसलन कुरान वगैरह को कभी झूठा ना बताएं, यानी ना झुठलाएं इसको, रब की जो आयात हैं, रब की निशानियां, सबसे पहले तो कुरान मजीद अल्लाह का अपना कलाम, ठीक है ना, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट निशानी है अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हमारे पास, ठीक है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला के हबीब अलैहिस्सलाम की बातें, राइट, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई जो चीजें हैं, वो फिर दूसरे नंबर पे रब की निशानियां हमारे पास मौजूद है, ठीक है। और फिर उन्हीं की जो तफसीर है या उन्हीं की जो एक्सप्लेनेशंस हैं जो कि हमारे यानी उम्मत के उलमा मशाइख ने जो बताई हैं, ये सब के सब रब की निशानियां। फिर उसके बाद रब जो है वो अपनी कायनात में जो हमें निशानियां दिखाता है, राइट, अपनी तखलीक में जो हमें निशानियां दिखाता है, हमारी अपनी जात के अंदर जो हमें निशानियां दिखाता है, ठीक है, ये सब के सब क्या हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ पॉइंट करती हैं, या ये कि कुरान और हदीस मुबारक को फर्दर वेरीफाई करती हैं हमारे अपने अंदर की ऐसी चीजें। जैसे मिसाल के तौर बहुत ही सादा सी मिसाल कि भाई कुरान मजीद के अंदर जो कायनात ये सूरज के बारे में कोई बात है, या जमीन के बारे में बात है, या पानी के बारे में बात है, या इंसान के अपने अंदर जो जो उसके बदन के अंदर जो चीजें होती हैं उनके बारे में बात है, तो हमारे यानी कायनात की निशानियां ये कुरान मजीद को हमारे सामने मजीद इन्फोर्स कर रही होती है कि देखो कुरान मजीद कितना सच है, राइट, और ये खालिक की तरफ से, ये किसी इंसान ने किसी मखलूक ने नहीं बना लिया है। तो ये सारी की सारी जो निशानियां हैं, तो जब कुरान का कोई इनकार करता है तो सारी निशानियों का इनकार कर देता है, ठीक है। तो काश कि हम वापस भेज दिए जाएं तो हम अपने फिर रब की आयात को कभी झूठा ना बताएंगे, और हम जरूर ईमान लाने वालों में से हो जाएंगे। हक तआला फरमाते हैं, यानी तफसीरन हजरत थानवी उन्होंने लिख रहे हैं कि हक तआला फरमाते हैं कि उनकी ये तमन्ना और वादा सच्ची रग़बत और कसद अताअत से नहीं है, वो जो वादे कर रहे हैं ना, ये बस बल्कि इस वक्त एक मुसीबत में फंस रहे हैं कि जिस चीज को इससे पहले दुनिया में दबाया और मिटाया करते थे वो आज उनके सामने आ गई। तो इतनी यानी सबसे मुश्किल तरीन सिचुएशन में आ करके तो ये वादा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत नहीं है। जैसे कि हम छोटी छोटी मुश्किल सिचुएशन में भी आकर के ना वादा कर लेते हैं, नहीं आइंदा नहीं करूंगी, आइंदा नहीं करूंगा, और गलती हो गई, गलती हो गई, लेकिन दिल का हाल तो अल्लाह को पता है ना कि भाई ये असल में कोई थोड़ी है। तो तौबा भी इसी वजह से तौबा के अंदर होता है ना, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से इरादा करना कि अल्लाह मैं दोबारा इस गुनाह को नहीं करूंगा, ठीक है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को तो पता है कि दिल के अंदर ये झूठा इरादा है, ये कोई सच्चा इरादा नहीं, ठीक है। और दूसरी बात ये भी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो बदलने का वक्त बनाया है ना, वो तो है इस दुनिया की जिंदगी, ठीक है। जब इस दुनिया की जिंदगी खत्म हो गई तो अब वो जो बदलने की सलाहियत है इंसान के अंदर, वो सलाहियत अब खत्म हो गई। अब जो है वो जब वहां से अगर उनको फिर से कोई दुनिया बना करके उसके अंदर लौटा दी, वैसे ये दुनिया तो खत्म हो गई, वैसे भी कयामत आ गई, तो कयामत के अंदर तो ये दुनिया खत्म हो गई, ठीक है ना, वो वक्त गुजर गया। अब जो है अगर वहां जहन्नुम के दरवाजे से इनको जो है वो वापस किसी जगह पे पहुंचा भी दिया जाए तो चेंज पीरियड तो खत्म हो चुका है, गॉन हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है वो, ठीक है। तो अब कैसे ये अपने आप को चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो वैसे तो यही है इसका मतलब जो मुफस्सिरीन ने बयान किया गया है कि झूठ बोल रहे हैं असल में, इनका दिल में इरादा नहीं है चेंज होने का, ठीक है। लेकिन हमें कुरान मजीद और तफसीर से ये भी बात पता चलती है कि भाई बदलने का टाइम तो दुनिया की जिंदगी है ना, जब आप इस दुनिया की जिंदगी से आगे चले गए, अब तो आप कैसे बदलेंगे, टाइम तो आगे चला गया, ठीक है। अब तो जो बदलना है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत बदल सकता है कि भाई आपके गुनाहों को माफ कर दे किसी वजह से, किसी नेकी को बहाना बना करके, या किसी जो है वो आपके वारिस को के नेकी को बहाना बना करके आपको माफ कर दिया जाए, लेकिन आप तो जैसे गुजर गए वैसे गुजर गए, अब आगे जा करके आपने तब्दील नहीं होना। तो फरमाते हैं कि जी ये सच्ची रग़बत और कसद अताआत से नहीं कह रहे हैं वाली बात, बल्कि उस वक्त एक मुसीबत में फंस रहे हैं कि जिस चीज को इससे पहले दुनिया में दबाया और मिटाया करते थे, यानी जिस हकीकत को का इनकार किया करते थे, उसको इग्नोर किया करते थे। दबाया से मुराद इग्नोर करना, ठीक है, वो आज उनके सामने आ गई। मुराद इस चीज से आखिरत का अजाब है, जिसकी वईद कुफ्र व मासियत पर दुनिया में उनको की जाती थी, ठीक है। और दबाने से मुराद इनकार है, मतलब ये है कि उस वक्त जान को बन रही है, इसलिए जान बचाने को ये सारे वादे हो रहे हैं, और दिल से हरगिज वादा पूरा करने का इरादा नहीं है। यहां तक कि अगर बिलफर्ज ये लोग फिर वापस भी भेज दिए जाएं, तब भी ये वही काम करें जिससे उनको मना किया गया था। बिलफर्ज यानी हकीकत में तो उनको वापस कोई नहीं भेजा जाएगा, लेकिन अगर भेज भी दिया जाए ना, तो भी ये वही वाला काम करेंगे दोबारा, यानी कुफ्र नाफरमान। और यकीनन ये उन वादों में बिल्कुल झूठे हैं, यानी ना इस वक्त ईफाए वादा का कसद, ना दुनिया में जाकर ईफाए वादा का उनसे इस्तेमाल, यानी जो ये वादे कर रहे हैं ये सच्चे वादे नहीं कर रहे, इसका इस्तेमाल ही नहीं है इनसे कि ये सच्चे वादे करेंगे। और दुनिया में जाकर के अगर इनको बिलफर्ज लौटा दिया जाए, तो दुनिया में जाकर के भी इन्होंने वादों पर अमल बिल्कुल भी नहीं करना, तो इस किस्म का इनसे कोई तवक्को ही नहीं। यानी जो काफिर होता है ना, इनकार करने वाला, ठीक है, वो इतना सख्त होता है, इतना सख्त इंसान होता है कि जहन्नुम को अपनी आंखों से भी देख लेना, तो उसके बाद भी उसने तब्दील नहीं, ठीक है। और जहन्नुम को इस दुनिया की जिंदगी में तो आंखों से देखने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, मरने के बाद ही जहन्नुम की जिंदगी, जहन्नुम को जो है वो आंखों से देखेगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत, जो कि इनकी हकीकत से और इनके रग रग रेशे रेशे से वाकिफ हैं, वही फरमा रहे हैं ना कि इसके बाद भी ये तब्दील नहीं, इसके बाद भी ये नहीं बदले, ठीक है। यानी जिसकी मौत कुफर पे आ गई, गोया के जिसको अंग्रेजी का एक मुहावरा होता है ना, कार्व्ड इन स्टोन, ठीक है, पत्थर के ऊपर लकीर है, जैसे कहते हैं ना मेरी बात तो पत्थर पे लकीर है, ये नहीं तब्दील होने वाली, उसी तरह से कुफर के ऊपर जिसका खात्मा हो जाए ना, वो फिर पत्थर पर लकीर की तरह से चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। हत्ता कि जहन्नुम को भी देख लेगा, फिर भी वो चेंज नहीं हो, वो तो एक टेम्पोरारीली, यानी जिसको कहते हैं ना, बकवास कर रहा है बेसिकली, ठीक है ना। हमें वापस लौटाते हैं तो हम जो है वो तब्दील हो जाएंगे, और हम जो है ईमान ले आएंगे, और हम इनकार नहीं करेंगे, ये सब बकवास कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ही और शी इज नाउ कार्व्ड इन स्टोन, इसमें चेंज नहीं होना। तो यानी ऐसा बुग़्ज़ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को, ठीक है, अपने उन बंदों से कि जिन्होंने अल्लाह की नेमतों को ठुठला करके अल्लाह के रसूलों का इनकार किया, ठीक है, ऐसा बुग़्ज़ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ऐसे बंदों से, ठीक है। तो हमें बंदों से बुग़्ज़ नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं कि किस बंदे का जो है वो इख्तिताम किस किस हालत में होगा, तो हमें जो जिंदा इंसान है ना, हमें उनसे बुग़्ज़ नहीं रखना है, चाहे वो काफिर क्यों ना हो, लेकिन हमें कुफर से बुग़्ज़ रखना है, कुफर से, ठीक है, गुनाह से, कुफर से, शिर्क से, ये हमें अपने दिल के अंदर बुग़्ज़ रखना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि ये कुफर और शिर्क और गुनाह यही वो चीजें हैं जिनकी वजह से कोई इंसान अपने रब का मकबूज बन जाता है, जिसके ऊपर रब जो है ना वो शदीद तरीन गुस्सा हो जाते हैं। वो किस वजह से हो जाते हैं? इसलिए तो नहीं कि उसकी शक्ल अच्छी नहीं लगती अल्लाह ताला, या उसके हाथ पैर जो है वो अल्लाह ताला ने कोई डिफरेंट तरीके से बना दिए थे, नहीं, सिर्फ कुफर शिर्क की वजह से ना वो अल्लाह ताला का मकबूज बन जाता है, मकबूज बन जाता है, ठीक है। तो अब हम मुसलमान अपने आप को समझते, अपने आप को मुसलमान गर्दानते हैं, लेकिन कुफर से और शिर्क से हमें बोझ नहीं होता दिल के अंदर, हमें दिल के अंदर कोई नफरत फील नहीं होती कुफर और बोझ से, इंसानों से तो बड़ी होती है हमें नफरत फील, फलाने जो है मेरे साथ ऐसे कर दिया, फलाने ने मेरी बात नहीं मानी, फलाने ने मेरी इज्जत भी करी, फलाने ने मुझे जो है वो ऐसे सुना दिया। बड़ी नफरत करते हैं इंसानों से, लेकिन कुफर से नफरत नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई? कुफर के बारे में बड़े नरम है हम, इंसानों के बारे में नरम नहीं है, कुफर के बारे में बड़े नरम है हम। तो फरमाते हैं कि जी ये मुनकरीन, हाँ ये मुनकरीन कहते हैं कि, और ये मुनकरीन कहते हैं कि जिंदगी और कहीं नहीं, बस यही दुनिया की जिंदगी, और हम इस जिंदगी के खत्म होने के बाद फिर जिंदा ना किए जाए। जैसे कि अंबिया अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि भाई मरने के बाद जिंदा किए जाओगे, नेकी का अजर मिलेगा और गुनाह का सजा मिलेगी। ठीक है, तो इनकार करते हैं कि नहीं, आप तो बस ऐसी जो है ना वो स्टोरियां देते रहते हैं, आप जो है ना वह ऐसी जो है ना वो क्या कहते हैं हमारे यहाँ कराची के, अब तो खैर पता नहीं नई नई स्लैंग्स आ गई हैं, लेकिन जब हम छोटे होते थे तो सड़क के लड़कों से कभी ये सुनने को इस तरह के अल्फाज मिलते थे। अलहमदुल्ला हमारे फैमिली में या घर में ऐसी बात नहीं होती थी, लेकिन सुनने को मिलती थी। लारे लप्पे देना, सुना है कभी आपने ये वाला लफ्ज लारे लप्पे देना? यानी ऐसी जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, फैंटेसाइज करना कि नेकी का अजर मिलता है और सब्र के ऊपर बेहतरीन सवाब मिलता है और अल्लाह ताला जो है वो खुश होते हैं और जन्नत के अंदर जो है वो ये नेमत मिलेगी वो नेमत मिलेगी, ये तो बस ऐसे ही बस सब्ज बाग दिखाते रहते हैं, हकीकतन की कोई नहीं है। ठीक है ना, इसी वजह से तो हम जो है वो सारे काम करते नहीं है, क्योंकि हकीकतन की कोई नहीं है। हम तो वो करते हैं जो सारी दुनिया कर रही है, जिस तरफ सारी दुनिया भाग रही है हम उधर भाग रहे हैं, क्योंकि उसमें हकीकत है, उसमें जो है वो फायदा मिलेगा, उससे जो है वो दुनिया बन जाएगी, उससे जो है वो, बल्कि यहाँ तक आज के जमाने में तो धोखा हो गया ना, तो यहाँ तक हो गया है कि इसी रास्ते से जन्नत भी मिल जाएगी, यानी गुनाहों के रास्ते से जन्नत भी मिल जाएगी। दुनिया तो मिलेगी ही मिलेगी, वो तो पहले था ना पुराना, जिसको के मौलाना अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह ने किताब में लिखा ला दीनियत। ठीक है, ला दीनियत तो सारी की सारी दुनिया यानी क्या कहेंगे उसको, ला दीनियत का उल्टा क्या बनेगा उर्दू जुबान में, दुनियाइयत है। पर दुनिया बनानी है, दुनिया बनानी, दुनिया बनानी, दीन की तरफ फिक्र ही कोई नहीं। लेकिन ये दौर जो है ना ये फितना है दज्जाल का दौर है, इस दौर में तो ऐसा धोखा लगा है कि ये मान लिया गया है कि दुनिया के रास्ते से यानी गुनाह के रास्ते, दुनिया के रास्ते का मतलब होता है गुनाह का रास्ता। ठीक है, अगर दुनिया में आप नेकी कर रहे हैं और गुनाहों से बच के जिंदगी गुजार रहे हैं, तो फिर ये दीनियत दीनियत है, ये तो ये ला दीनियत की थोड़ी है कि दुनिया में रह करके अल्लाह को राजी कर रहे हैं, ये तो असल दीनियत है। ठीक है, लेकिन आजकल क्या बन गया है कि गुनाह के रास्ते के ऊपर जो है वो अल्लाह की रजा भी मिलेगी नाउज बिल्ला, और गुनाह के रास्ते के ऊपर जन्नत भी मिलेगी। ये आज का दीन है जो लोगों ने बनाया हुआ है, शैतान ने बनाया हुआ है और दज्जाली निजाम ने बनाया है, गुनाह की वजह से जन्नत मिलेगी। और गुनाह को गुनाह से मानने से इनकार कर दिया, नहीं ये गुनाह है ही नहीं भाई, ये तो मौलवी ने बनाया हुआ है, ये तो पागलों ने बनाया हुआ है, तो जाहिलों ने बनाया हुआ है इसको गुनाह, ये गुनाह को थोड़ी था। जैसे मिसाल के तौर पर आज आप देख लें चारों तरफ दीनदारी है ना, दीनदारी हर तरफ ही दीनदारी, सब माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, रमजान ट्रांसमिशन है, रमजान आता है तो रमजान ट्रांसमिशन जो है वो छा जाती है हर टेलीविजन स्टेशन के ऊपर, और हर जगह दीन की बातें हो रही हैं, और हर जगह जो है वो दाढ़ियां भी हैं और भी बहुत कुछ है। ठीक है, लेकिन इसी दौर इसी जमाने में जबकि हर तरफ दीन की हवाएं चलती हुई नजर आ रही हैं, बजाहिर नजर आ रही हैं, इसी दौर में आप देख लें बेपर्दगी, मौसीकी, राइट, और हत्ता के नाच गाना तक है, नाच गाना भी बेपर्दगी और मौसीकी ये उरूज पर है, इतनी पहले भी नहीं होती थी, जबकि लादीनियत का जमाना था ना, उतना नाच गाना और उतनी जो है वो मौसीकी उस वक्त भी नहीं होती थी जितनी अब हो रही है, और उन जगहों पे हो रही है जो कि बड़े दीनदार समझे जाते हैं। तो कल ही जो है वो साजिश को फिर किसी ने लिखा, पता नहीं क्लास व्लास तो वैसे ऐसे लोग लेते नहीं है, बस ऐसे ही जो है ना उनको सवाल पूछना होता है कभी तब आ जाते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर कि जी वो हमारे मुआशरे में ये हो गया है कि जी शादी ब्याह के मौके के ऊपर तो मौसीकी जरूरी है, क्योंकि खुशी का मौका है और खुशी के लिए जो है वो मौसीकी से ज्यादा खुशी होती है। तो आप बताएं कि क्या शादी ब्याह के मौसम जो मौके पर मौसीकी जायज है? क्या जवाब दूं उनको? मैं मौका नहीं मिला अभी तक जवाब देने का, लेकिन ये क्या भाई मौसीकी हराम है? ये शादी ब्याह के मौके ऊपर कहाँ से जो है वो जायज हो गई? वो जो बच्चियों का गीत गाना जो था वो मौसीकी के साथ के थोड़ी था, ठीक है, और उसके अंदर साज और ये सब जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो ये तो कहाँ से आ गए भाई उस जमाने के अंदर? वो उसी को कोट करके मौसीकी को जायज करते हैं ना आजकल, हर किस्म की मौसीकी, हत्ता के नाच गाना भी, ठीक है। तो ये तो साथ साथ चल रहा है ना, वही रमजान ट्रांसमिशन वाला ही मामला है कि भाई हाँ रमजान की नेकी की बड़ी बातें हो रही हैं, और बातें करने वाली जो है वो भी जो है वो बेलिबासी में मुबतला है, राइट, बेपर्दगी, बेलिबासी, और साथ साथ जो है वो मौसीकी और बजाने क्या क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये आपका सवाल है तो इसको पढ़ने का, तो और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको उस वक्त देखें तो बड़ा अजीब वाकया नजर आएगा। जबकि ये अपने रब के सामने खड़े, रब के सामने हिसाब के लिए खड़े किए जाएंगे, और अल्लाह ताला उनसे फरमा देगा कि कहो क्या ये कयामत के दिन दोबारा जिंदा होना हमारे वाकई नहीं? वो कहेंगे बेशक वाकई है, यानी सच है, ये तो हक है, ये कसम अपने रब की, अल्लाह ताला फरमा देगा, यानी बला और रब्बिना, कसम के रब की, अल्लाह ताला फरमाएगा तो अब अपने कुफर का मजा चखो, इनकार का मजा चखो, इसके बाद दोजख में भेज दिए जाएंगे, बेशक सख्त खसारे में पड़े वो लोग जिन्होंने अल्लाह से मिलने की यानी कयामत के रोज जिंदा होकर अल्लाह ताला के सामने पेशी की, तकजीब की, ठीक है, कि या तो सजा की तकजीब करी है या जजा की तकजीब करी है, दोनों ही रब के सामने पेश होने की तकजीब है, और ये तकजीब थोड़े दिनों रहेगी, यहाँ तक कि जब वो मुअय्यन वक्त यानी कयामत का दिन मा मुकदमात, जो कयामत से पहले आने वाले मुकदमे हैं, यानी समथिंग दैट लीड्स टू समथिंग, उसको मुकदमा कहते हैं उसका, तो जब वो मुअय्यन वक्त यानी कयामत का दिन मा मुकदमात उन पर दफतन बिला इत्तला आ पहुंचेगा, उस वक्त सारे दावे और तकजीब खत्म हो जाएंगे और कहने लगेंगे कि हाय अफसोस, हमारी कोताही और गफलत पर जो उस कयामत के बारे में हमसे हुई। अब कयामत का दिन जो है ये किन के ऊपर आएगा? ये तो वो लोग होंगे ना जो कि आखिरी जमाने में जिंदा होंगे, कि जिस वक्त जो है वो कयामत कायम होगी, बाकी सारे लोग तो मर चुके होंगे उस वक्त तक, हम सब तो नहीं जिंदा रहने वाले इतना लंबा अरसा कि हमारे ऊपर कयामत कायम हो, अल्लाह ना करे हमारे ऊपर कयामत कायम हो, हम तो सारे के सारे कब्र में होंगे उस वक्त, और पिछले भी सारे के सारे लोग कब्र में होंगे, तो फिर यहाँ पर क्या मतलब है कि उनके ऊपर कयामत कायम होगी? तो कयामत तो फिर बहुत थोड़े से लोगों के ऊपर कायम होगी ना। तो एक तो ये कि जो कब्र में होंगे कयामत के दिन उनके ऊपर भी कयामत कायम, ठीक है, इवन कब्र वालों पर भी, क्योंकि कब्र वाले भी जो हैं वो आलम बरजख के अंदर जिंदा होते हैं, है? बस वो इस आलम दुनिया की जिंदगी के तरीके पे जिंदा नहीं है, लेकिन कब्र के अंदर तो वो जिंदा है, ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर जो गुनाहगार हैं या काफिर हैं तो उनके ऊपर कब्र में अजाब हो रहा है भाई, जो बिल्कुल ही मरा हुआ है तो उसके ऊपर अजाब का फायदा, और जो नेक हैं उनको वहां पे सवाब मिल रहा है, यानी बड़ी पहले भी कई दफा बात हो चुकी है कि कब्र के अंदर जो है वो उनको हवाएं भी मिल रही हैं और अच्छी अच्छी जो है वो खुशबुएं भी मिल रही हैं, हत्ता के उनके जो है वो बाकायदा मजालिस भी हो रही हैं, गुफ्तगू शुनीद भी हो रही है, बैठकें भी हो रही हैं, बातचीतें भी हो रही हैं, अहाल अहवाल भी चल रहे हैं सारे के सारे, तो कब्र की जिंदगी तो पूरी की पूरी जिंदा जिंदगी है ना, फर्क सिर्फ ये है कि हमें वो नजर नहीं आती और वो हमसे जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ये फर्क है खाली इसके अंदर। तो जब कयामत कायम होगी तो कब्र वालों के ऊपर भी कायम होगी, उनकी ये जो जिंदगी चल रही है ये भी खत्म हो जाएगी, ठीक है, और फिर जब दूसरी सूर फूंकी जाएगी तब जो है वो सारे के सारे मकबूल दोबारा से उठाए जाएंगे, कब्रों में से सारे उठाए जाएंगे उस वक्त। अच्छा दूसरी चीज क्या, इसकी दूसरी एक्सप्लेनेशन क्या कि कयामत जब उन पर आएगी, क्या मतलब मौत, मौत जब आएगी, ठीक है, तो मौत तो हर इंसान के ऊपर आ रही है, चाहे वो आखिरी जिंदगी में यानी जो एक्चुअल कयामत है उस वक्त मौत आए उनके ऊपर, चाहे जो है उससे पहले मौत आए उनके ऊपर, तो मौत तो हर इंसान के लिए कयामत है, ठीक है। तो बहरहाल इसके अंदर बीच में एक और मजीद क्या कि भाई क्या कयामत, जब वो कयामत कायम हो जाएगी तो फिर जो है वो कब्र का अजाब खत्म हो जाएगा या कब्र का सवाब खत्म हो जाएगा, अल्लाह, ठीक है। लेकिन ये है कि जब ये तो हदीस से भी साबित है कि जब सूर फूक दी जाएगी ना तो उसके बाद तो फरिश्ते भी मर जाएंगे, इंसान तो इंसान कब्र के अंदर या जमीन के ऊपर इंसान तो इंसान, फरिश्ते भी मर जाएं, और आखिरी मरने वाले कौन होंगे, हजरत इस्राफील अलैहिस्सलाम खुद, ठीक है, या इस्राफील अलैहिस्सलाम नहीं, इस्राफील अलैहिस्सलाम तो वो होंगे जो कि सबसे पहले जिंदा किए जाएंगे, क्योंकि दूसरा सूर किसने फूकना है, इस्राफील अलैहिस्सलाम ने फूकना है, तो सबसे पहले जिंदा उनको किया जाएगा ताकि भाई सूर फूकें, अब जो है वो सब दोबारा से जिंदा हो। लेकिन जो आखिरी मरने वाले होंगे वो, जहां तक मुझे याद पड़ता है पड़ा था कि हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम, मौत के फरिश्ते, क्योंकि सबको मौत जो है किसने देनी है, इज़राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से देते हैं, और फिर जब उनको मौत देनी है तो अल्लाह ताला फिर उनकी जान खुद कब्ज कर लेंगे और उस इज़राइल अलैहिस्सलाम भी मर जाएंगे। यानी रूहानी जो जो खालिसतन रूहानी मखलूक है ना वो भी मर जाएगी। बहरहाल तो मौत के वक्त अगर हम इसको मौत ही समझें, जो कि हम सब की मौत है ही, आनी ही है, तो मौत के वक्त जो है ना फिर इनके सारे दावे तकजीब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि फिर अगला जहान नजर आना शुरू हो जाएगा, और फिर उसके बाद यही होगा, हाय अफसोस हमारी कोताही और गफलत जो इस कयामत के बारे में हमसे हुई। हालत उनकी ये होगी कि वो अपने कुफर व नाफरमानी का बार अपनी कमर पर लादे हुए होंगे, यानी मैदान हशर की बात हो रही है कि वहां पे जो चल रहे होंगे तो बोझ कमर के ऊपर लदा हुआ होगा। खूब सुन लो कि बुरी होगी वो चीज जिसको अपने ऊपर लादे होंगे, और दुनियावी जिंदगानी तो कुछ भी नहीं बजुज लब लाभ व लहव के बवजह गैर नाफे और गैर बाकी होने। भाई नेकी जो है वो तो नाफे होगी, तो ये गैर नाफे कैसे, क्योंकि ये गुनाह गुनाह की बात हो रही है यहाँ, ठीक है, तो दुनिया की जिंदगी जो कि गुनाहों में कट गई वो गैर नाफे यानी कोई फायदा ना पहुंचाने वाली है, और गैर बाकी होने के, क्योंकि दुनिया की हयात बाकी नहीं रहेगी जिसके अंदर ख्वाहिशात पूरी कर रहे थे। और पिछला घर परहेजगारों के लिए बेहतर है, पिछला से यहाँ पर मुराद अगला, हम क्योंकि अगला जो है वो आगे आने वालों को कहते हैं, अगला घर परहेजगारों के लिए बेहतर है, क्या तुम सोचते नहीं हो, ये तो हो गया खुलासा तफसीर। किसी को कोई सवाल हो इसके मजमून के मुताल्लिक तो वो लिख के पूछ लें, किसी ने ऑलरेडी सवाल यहाँ पे लिखा हुआ था जो कि मजमून से थोड़ा सा हटके था, तो उसको अभी हम पढ़ लेते हैं। तो उन्होंने लिखा कि हम में से ज्यादा लोग शिर्क खफी में मुब्तला होते हैं, हम कैसे समझेंगे कि मेरे अंदर भी है, मेरे अंदर भी शिर्क खफी है, हम ये कैसे समझेंगे। तो पहली बात तो ये कि क्या शिर्क खफी की तारीफ हमें पता है, ठीक है, कि शिर्क खफी किस चीज को कहते हैं, तो ये चीज भी क्लियर होना जरूरी है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई है कुछ और हम कुछ और समझ रहे हैं और फिर उसके बाद ये सोच रहे हैं कि मैं इसमें मुब्तला हूँ कि नहीं। तो शिर्क खफी जो है वो रियाकारी को कहते हैं, हदीस मुबारक से पता चलता है कि रियाकारी यानी अल्लाह की बजाय किसी और के लिए नेकी का काम करना, अल्लाह के लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए, ठीक है, जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन तवाज़ा लिल्लाही, ठीक है, रफ़अहुल्लाह, जिसने अल्लाह के लिए तवाजो इख्तियार करी अल्लाह ताला उसको उठाता है, तो तवाजो इख्तियार करना बगैर अल्लाह के किसी और के लिए कि लोग मुझे अच्छा समझें, कितना मुतवाजे इंसान है, कितना झुक के मिलता है, कितने अच्छे अखलाक वाला है, यार लोगों की खातिर तवाज़ो इख्तियार कर रहे हैं, लोगों की तारीफ की खातिर, तो उसके ऊपर नहीं रफा होगा, अल्लाह ताला उसके ऊपर नहीं बुलंदियां अता फरमाते। तो शिर्क खफी होगा कि किसी दूसरे की तारीफ के लिए तवाज़ो इख्तियार करना, ठीक है। अब इसके अंदर भी दूसरे की तारीफ, उसके अंदर भी मजीद तफसील ये भी है कि दूसरे से मुराद यहाँ पर अल्लाह के अलावा कोई और, ठीक है ना, ये नहीं मेरे अलावा कोई और, नहीं, अल्लाह के अलावा किसी और की तारीफ, और ये अल्लाह के अलावा कोई और, इसके अंदर दूसरे इंसान भी शामिल हो जाते हैं और मेरा अपना नफ्स भी शामिल हो जाता है, क्योंकि आजकल के इंडिविजुअल, क्या कहते हैं इसको, इंडिविजुअलिस्टिक जमाने में, क्योंकि अब जो है वो बहुत सारे ऐसे भी लोग दुनिया में मौजूद हैं हु डोंट केयर अबाउट एनी वन एल्स, किसी की उनको परवाह नहीं है, सो कॉल्ड कहते हैं, असल में परवाह होती है लेकिन झूठ बोल रहे होते हैं, मुझे तो किसी की परवाह नहीं है, ऐसे होता है ना बहुत सारे, आई डोंट केयर अबाउट एनी वन, राइट, असल में दे डू केयर अबाउट पीपल, उनको होती है कि कोई उनकी तारीफ कर दे तो बड़ा जबरदस्त फील होता है, लेकिन झूठ बोल रहे होते हैं कि मुझे तो किसी की परवाह नहीं है, ठीक है, चलो ठीक है, अगर हम मान लें आपकी बात कि हाँ भाई आपको किसी की परवाह नहीं है, लेकिन इसके अंदर खुद अपना नफ्स भी शामिल है कि अपने नफ्स की खुशी के लिए अमल कर रहे हैं, ठीक है ना, कि आई फील गुड अबाउट इट, राइट, आई फील गुड अबाउट माई सेल्फ, ये भी तवाज़ु लिल्लाह नहीं है, ये भी अल्लाह के लिए तवाज़ु इख्तियार करना नहीं है, बल्कि अपने नफ्स की खातिर तवाज़ु इख्तियार करना, ठीक है। तो शिर्क खफी इसको कहते हैं। अब हम कैसे समझेंगे कि मेरे अंदर भी है, तो हम ऐसे समझेंगे कि व्हेन यू डोंट फील गुड अबाउट समथिंग दैट इज established in the deen as thawab, ठीक है, as a good deed, जब कोई ऐसा काम जो कि दीन के अंदर पता है, बता दिया गया है कि ये अल्लाह की रजा वाला काम है, ठीक है ना, वो काम हम नहीं करेंगे जब तक के कोई दूसरा हमारी तारीफ ना करे, या मैं अपने आपके बारे में अच्छा फील ना करूं, अगर ये दोनों चीजें हो रही हैं या इनमें से कोई एक हो रही है तब तो मैं नेकी का काम करूंगी, और अगर ऐसी नहीं हो रहा कि भाई मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा या कोई मेरी तारीफ नहीं कर रहा, तो फिर मैं नहीं करूंगी, ठीक है, ये है यानी लिटमस टेस्ट इसको कहते हैं, लिटमस टेस्ट, अगर नहीं भी किसी ने केमिस्ट्री के अंदर ये एक्सपेरिमेंट किया लिटमस पेपर वाला, तो भी आसान सी बात है कि भाई ये बेहतरीन क्या कहते हैं अलामत है इस बात की, बेहतरीन टेस्ट है इस बात, ठीक है, कि नेकी उस वक्त करने का बिल्कुल जी नहीं चाहता, या ये कि जी नहीं, कि जी नहीं चाहता, बल्कि नेकी नहीं करती अगर कोई दूसरा तारीफ नहीं करता, या अपने दिल में जो है वो अच्छा फील नहीं होता, अपन नहीं करती, नहीं, ये है शिर्क खफी की अलामत। हाँ ये कभी होता है, ठीक है, तभी तौर पर इंसान के ऊपर ऐसे हालात आ सकते हैं कि उसका नेकी करने का दिल नहीं चाह, ठीक है ना, उसके लिए मुश्किल हो रही है नेकी करना, ठीक है ना, क्योंकि लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे, लोग जो है वो उसको ताने दे रहे हैं, लोग उसको जो है वो फिर भी अब्यूज कर रहे हैं, और उसकी वजह से उसका दिल भी जो है वो नहीं चाह रहा नेकी करने का, ठीक है, लेकिन कर लेती है, ठीक है ना, जिस तरह से भी मारे बांधे अपने आप को फोर्स करके, मजबूर करके अपने आप को, फिर भी वो नेकी कर लेती है। तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर शिर्क खफी नहीं है, इसके अंदर शिर्क खफी नहीं है, ठीक है, तो वो दिल के अंदर ऐसे ख्याल आ जाना, इसको वसवसा कहते हैं, और वसवसे से जो है ना वो मसला नहीं होता, ठीक है, वसवसे आ रहे हैं कि हाँ भाई मैं क्यों करूँ नेकी, कोई मैं अप्रिशिएट ही नहीं करता और इसमें तो कोई मुझे अच्छा फील ही नहीं होता, ठीक है, लेकिन अगर इसकी बुनियाद पर ये नेकी को छोड़ नहीं रही तो फिर ये शिर्क खफी से क्लियर है, पाक है ये शिर्क खफी। लेकिन अगर छोड़ देती है नेकी, क्यों करूं नेकी, छोड़ दिया नहीं करूंगी, इसका मतलब है कि ये शिर्क खफी मुबतला है। जब अप्रिशिएट करेंगे तो फिर कर लेगी। ठीक है, तवाज़ो यानी खुद को छोटा समझकर आजिज़ी इख्तियार कर लेना। जी, खुद को छोटा समझकर आजिज़ी इख्तियार कर लेना। जी, तवाज़ो का तरीका सीख लो लोगों सुराही से, झुकी जाती कि जारी फैज भी है और झुकी जाती है गर्दन भी, यानी लोगों को की खिदमत भी करे जा रही है और इसकी गर्दन भी झुकी चली जा रही है। ठीक है, तो ये है तवाज़ो, लेकिन लिल्लाह, ये अल्लाह के लिए होना चाहिए, इंसानों के लिए नहीं होना चाहिए। चाहे आप, मैं खुद इंसान हूँ, यानी खुद ना खुद मेरे लिए ना किसी और इंसान। वी डू सम नेकी इन हुकूकुल इबाद बट इट इज नॉट रिकग्नाइज और एक्नॉलेज, देन ऑल्सो इट इज शिर्क खफी। बट इट इज नॉट रिकग्नाइज और एक्नॉलेज, देन ऑल्सो इट इज शिर्क खफी। नहीं, आपको तो ये क्वेश्चन ना हुआ, आप अपने क्वेश्चन को खुद से पढ़ें। ये तो वी डू सम नेकी इन हुकूकुल इबाद बट इट इज नॉट रिकग्नाइज और एक्नॉलेज। नहीं, तो ये तो आपका सवाल ही ना हुआ ना, आप रिफ्रेज करने की जरूरत है आपको। आई वॉन्ट टू आस्क इफ दिस इज शिर्क खफी और नॉट। योर क्वेश्चन इज नॉट इवन कंप्लीट, योर फ्रेज इज नॉट इवन मेकिंग सेंस। ठीक है, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। हजरत जब काफिर जहन्नुम देख लेंगे फिर अगर उनको वापस वापस भेज दिया जाएगा फिर भी वो कुफर करेंगे, क्या ये तकब्बुर की रूहानी बीमारी की वजह से होगा? तकब्बुर की रूहानी बीमारी की वजह से होगा, खाली तकब्बुर की रूहानी बीमारी की वजह से तो नहीं, मतलब और भी रूहानी बीमारियां सबसे बढ़कर के हुब्बे दुनिया। ठीक है, क्योंकि बाकी सारी रूहानी बीमारियां जो है ना, दे स्टेम आउट ऑफ दिस हुब्बे दुनिया। ठीक है, तो ये आपने वैसे अच्छा पॉइंट उठाया कि ये जो रूहानी बीमारी होती है ना, ये ऐसी चीज होती है कि जो के मरने के वक्त कार्व्ड इन स्टोन हो जाती है। अब ये रूहानी बीमारी नहीं दूर होती। ठीक है, तो जो कुफर करने वाले होंगे ना, यानी जिनमें रूहानी बीमारी बिल्कुल 100% होगी, क्योंकि कुफर मीन्स 100% रूहानी बीमारी। ठीक है ना, यानी देर इज नथिंग गुड इन, एवरीथिंग इज, जैसे कहते हैं ना, वो आपका गोश्त, आप घर में जो है वो गोश्त खरीद करके लाए बाजार से। ठीक है, तो अब होता है ना, उस गोश्त का एक हिस्सा जैसे सड़ा हुआ है, तो आप उस हिस्से को काट करके फेंक दें तो बाकी हिस्सा जो है ना उसको आप पका सकती हैं। ठीक है ना, लेकिन एक होता है कि पूरा का पूरा गोश्त ही सड़ा हुआ है, पूरा का पूरा गोश्त सड़ा हुआ है। ठीक है ना, अब उसको आप बिल्कुल भी अपने इस्तेमाल में नहीं लेके आ सकते ना। ठीक है ना, तो जो काफिर कुफर के ऊपर दुनिया से चला गया वो पूरा का पूरा सड़ा हुआ है रूहानी बीमारी से, उसके अंदर इन्फेक्शन है, वो पूरा का पूरा इन्फेक्टेड। ठीक है, तो अब ये जो रूहानी बीमारी की फॉर्म है ना, 100% इन्फेक्शन, ठीक है, ये अल्लाह ताला जहन्नुम में भी इसको फिर दूर नहीं करेंगे। ठीक है ना, है ना, वला युज़क्कीहिम, अल्लाह ताला तज़किया नहीं करेंगे उनका। ठीक है, क्या मतलब, रूहानी बीमारी जहन्नुम के आग से भी नहीं धुलेगी। जबकि इसके बरक्स अगर कोई ईमान पे खात्मा होता है किसी का और उसके अंदर रूहानी बीमारियां बहुत ज्यादा थी, तकब्बुर भी था, उजब भी था, और दुनिया की मोहब्बत भी थी काफी सारी, और शहवत भी थी, और जो है गुस्सा भी था, लेकिन ईमान भी था, साथ साथ ईमान भी था। ठीक है, तो उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है ना, वो मुख्तलिफ तरीकों से उसका तस्किया करते 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 जन्नत में जाने से पहले उसकी रूहानी बीमारियां खत्म हो जाएंगी और उसकी जो है ना वो ईमान पूरा का पूरा छा जाएगा उसके ऊपर, और फिर वो जन्नत में दाखिल किया जाएगा। ठीक है, तो रूहानी बीमारी इतनी खतरनाक चीज है कि वी कैन नॉट अफोर्ड टू लिव विद इट। है, इसको अभी ही खत्म करने की मेहनत कर लेनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि जी मरने के बाद जो है ना फिर हमारा तस्किया किया जाए, जो कि मुश्किल और तकलीफों के जरिए, दुनिया में भी तकलीफों और मुश्किल के जरिए से ही इलाज होता है, अगर हम इख्तियारी तौर पर उसका इलाज नहीं करना चाह रहे हैं, अच्छा इन्होंने शायद रिफ्रेस किया है अपने क्वेश्चन को कि काइंडली करेक्ट मी इफ वी एक्सपेक्ट आवर हुकूक अल इबाद जेस्चर्स टू बी एक्नॉलेज्ड इज दैट शिर्क खफी आल्सो, एग्जैक्टली एब्सोल्युटली ठीक है, इफ वी एक्सपेक्ट आवर हुकूक अल इबाद जेस्चर्स टू बी एक्नॉलेज्ड ठीक है ना, देन इट इज शिर्क खफी। लेकिन अगेन इसमें भी देखिए, मैंने आपको जो तारीफ बता दी थी ना शिरके की खफी की, जो कि पीछे सवाल था, तारीफ तो वही है कि जब हम अपने नेक आमाल को छोड़ देते हैं बिकॉज दे आर नॉट बीइंग एक्नॉलेज्ड और बिकॉज वी आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट, देन इट इज शिरके खफी ठीक है ना। तो तारीफ तो वही है, दैट इज एन ऑल इनकम्पसिंग ऑल कवरिंग तारीफ डेफिनेशन ठीक है। अब जो आप बोल रही है ना इफ वी एक्सपेक्ट आवर हुकूक अल इबाद जस्टिस टू बी एक्नॉलेज्ड इज दैट शिर्क खफी आल्सो, तो ये जो है ना ये इट इज एन इंडिकेशन ऑफ शिर्क खफी और इट इज समथिंग दैट कैन लीड यू टू शिर्क खफी ठीक है ना, लेकिन इट इज नॉट 100% शिर्क खफी ठीक है ना, बिकॉज ये एक कमजोरी की अलामत ठीक है ना, ये एक कमजोरी की अलामत है, ये कंप्लीट क्या कहते हैं कंप्लीट यानी खराबी की अलामत नहीं है ठीक है ना, ये कमजोरी है कि भाई हम तवक्कु रख रहे हैं लोगों से ठीक है, तो डेफिनेटली दिस इज नॉट ए प्लेस यू वांट टू बी, दिस इज नॉट समथिंग एक्स यू शुड बी ओके अबाउट ठीक है ना, इसको दूर करने की जरूरत है। लेकिन ये है कि जैसे अगेन कनेक्टिंग बैक टू द प्रीवियस डेफिनेशन दैट आई ऑलरेडी गेव, कि आप एक्सपेक्ट तो कर रही हैं लोगों से एक्नॉलेजमेंट ठीक है ना, लेकिन अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती तो ऐसा नहीं है कि यू कंप्लीटली गिव अप डूइंग गुड जेस्चर्स, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल गिव अप कर देती हैं, तो फिर वो शिर्क खफी नहीं ठीक है ना, हाँ फिर भी अच्छी बात नहीं है ठीक है ना, और अगर ये चीज बढ़ गई ठीक है ना, एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ गई कि आपने जो है ना वो करना ही छोड़ दिया, तो फिर तो वो शिरके खफी बन जाएगा, तो इट्स ऑन द रोड टू शिरके खफी, इट्स बीइंग ऑन द रोड टू शिरके ठीक है। तो आपका सवाल अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह जवाब भी फिर अब उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा ठीक है। कोई और जी, अल्लाह ताला से तौबा से बात शुरू होती है ठीक है, अल्लाह अब तक जो मैंने गलतियां करी हैं उसके ऊपर आप मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा मैं आपसे इरादा करती हूँ दिल के अंदर कि मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगी, आप मेरी मदद इसको तौबा करना ठीक है ना, अल्लाह ताला आपको इसके ऊपर जो भी गलतियां कोताहियां हो गई, सबसे होती हैं, हमसे भी होती हैं, आपसे भी होती हैं, सब इंसानों से होती हैं, अल्लाह ताला हमें तायबीन में शामिल, तौबा करने वालों हमारे, और जब तौबा हो गई देन बस माशाल्लाह, फिर तो उसके बाद अल्लाह ताला जो है ना वो पुल कर लेते हैं अपनी तरफ। जजाकल्लाहु खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह।